ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वैदेशिक रोजगारी में रहे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना में समेटने का काम हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का बढ़ा दायरा। देश के विकास के लिए सबका सहकार्य होना जरूरी है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। भारत से नेपाल में फोन करने पर लगने वाले शुल्क की दर घटाने का संचार मंत्री ने किया भारत सरकार से आग्रह। और यूक्रेन में रूसी सेना के ड्रोन हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव संबंध में उठाए गए विषयों का कानूनी रूप में और राज्य की ओर से अधिकतम संबोधन करने की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसद भुवन बहादुर सुनार ने संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस पर विचार विमर्श के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ते जाने पर समाज में मौजूद विभेद और उत्पीड़न का अंत भी क्रमशः होता जाएगा। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि कल की क्रांति और आंदोलनों के समय उठाए गए विषय ही संकल्प प्रस्ताव में समेटे गए हैं, इसलिए इसे लेकर उन्हें कोई विमति नहीं है। इससे पूर्व सांसदों ने मानव तस्करी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय की अनियमितता, फेवाताल पर अतिक्रमण, सुकुम्बासी समस्या लगायत मुद्दों को उठाया था। बैठक ने राष्ट्रीय सभा सदस्य विमला राय पौड्याल को राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 12 गते रविवार के लिए बुलाई गई है। विदेशों में नौकरी कर रहे और स्वरोजगार कर रहे नेपाली लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना में समेटने के काम का शुभारंभ किया गया है। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने वैदेशिक रोजगारी में रहे लोगों को योजना में सूचीकृत करने के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि रोजगार के लिए ही विदेश जाने की बाध्यात्मक स्थिति का अंत करना अब की जिम्मेदारी है। उन्होंने विदेश में रहे सभी नेपालियों से सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम से जुड़ने और सुरक्षित महसूस करने का आग्रह किया। ये बताते हुए कि स्वरोजगार क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजना का पहुंचना निश्चित हो गया है, प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि राज्य द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ गया है। इस योजना के शुरू होने से वैदेशिक रोजगारी में रहे लाखों नेपालियों के लाभान्वित होने की अपेक्षा की जा रही है। प्रावधान के तहत विदेशों में नौकरी करने वाले या स्वरोजगार में रहे नेपाली कम से कम आधारभूत पारिश्रमिक की 21.33% रकम यानी न्यूनतम 2000 रूपये मासिक रूप में और अधिकतम इसका 3 गुना तक कोष में योगदान कर सुविधा में सहभागी हो सकेंगे। बता दें कि विक्रम संवत 2075 मार्गशीर्ष 11 गते से योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना को क्रियान्वयन में लाया गया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि देश के निर्माण में सभी का सहयोग जरूरी है। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई भेंट में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने निर्माण व्यवसायियों को निरुत्साहित होने से रोकने के लिए आवश्यक समन्वय करने की प्रतिबद्धता भी जताई। आज ही राष्ट्रपति पौडेल ने पशुपति क्षेत्र स्थित वनकाली में वृक्षारोपण किया। राष्ट्रपति पौडेल ने आज वनकाली क्षेत्र में नागचंपा फूल के पौधे लगाए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ नेपाल के लिए चीन के राजदूत चेन सोंग ने भेंटवार्ता की। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज हुई भेंट में उनके बीच नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, पारस्परिक हित लगायत विषयों में बातचीत हुई। ये बात राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने भारत से नेपाल में टेलीफोन कॉल करने के लिए लगने वाले शुल्क की दर को कम करने का भारत सरकार से अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान से विचार विमर्श के दौरान नेपाल और भारत के बीच टेलीफोन दरों में भारी असमानता का जिक्र करते हुए संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि दोनों देशों के बीच टर्मिनल शुल्कों को कम किया जाना चाहिए। भारतीय मोबाइल सेवाओं के नेपाल के भीतरी इलाकों तक उपलब्ध होने के तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि दोनों देशों के सेवा प्रदाताओं और नियामकों को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। मंत्री शर्मा ने बताया कि भारतीय टेलीविजन चैनलों को नेपाल में आसानी से प्रसारित किया जा सकता है, लेकिन नेपाली चैनलों को भारत में प्रसारित करना मुश्किल है। उन्होंने नेपाली चैनलों को भी भारत में आसानी से प्रसारित करने के लिए वातावरण बनाने की बात पर जोर दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि भारत सरकार लंबे समय से विभिन्न विषयों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती आ रही है, उन्होंने भारत सरकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रविधि और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी नेपाल की सहायता करने का अनुरोध किया था। ये बताते हुए कि रेडियो नेपाल और ऑल इंडिया रेडियो के बीच एक दूसरे की सामग्री प्रसारित करने जैसे मामलों पर एक समझौते पर पहुंचने की तैयारी की जा रही है। मंत्री शर्मा ने कहा कि नेपाल की तकनीकी टीम समझौते के मसौदे का अध्ययन कर रही है और ये मामला जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। इसी तरह ये स्पष्ट करते हुए कि नेपाल टेलीविजन और प्रसार भारती के बीच एक दूसरे की सामग्री के प्रसारण के संबंध में सकारात्मक चर्चा भी आगे बढ़ी है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये मामला भी जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य के रिक्त रहे तन्हू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 और 12 क्षेत्र नंबर 2 के लिए आगामी वैशाख 10 कते रविवार को होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने को इच्छुक राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए इसी चैत 12 गते तक का समय मुहैया कराया है। बता दें कि बीते मार्गशीर्ष 4 गते को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य के चुनाव में तन्हू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रामचंद्र पोडेल के राष्ट्रपति और 12 क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के बाद उन क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है। दैलख में गैस की ढुआनी कर रहे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से ट्रक चालक कृष्ण चौधरी, लक्ष्मीराम चौधरी और विष्णु चौधरी की मौत हो गई, जबकि ट्रक के सहचालक प्रकाश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय दैलख के प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लमसाल ने दी। पोखरा में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा का वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है। नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड और पाटा की मुख्य सहभागिता में मई 29 से जून 1 तक होने वाले इस कार्यक्रम का स्थानीय संयोजन पोखरा परिषद द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉक्टर धनंजय रेग्मी ने दी। बता दें कि सन 1975 में पाटा इंटरनेशनल का सदस्य बनने के बाद नेपाल पहली बार पाटा के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। फर्जी तौर पर तिब्बती शरणार्थी को नेपाली नागरिकता दिलाई गई घटना का खुलासा होने के बाद इसमें संलग्न 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी काठमांडू घाटी के अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक सोमेंद्र सिंह राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि इन 5ों को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रहरी परिसर टेकू भेज दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने आज बताया कि कीव क्षेत्र में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रात भर के रूसी ड्रोन हमले में 4 लोग मारे गए। 4 लोगों के मलबे में दबे होने की भी संभावना उन्होंने जताई। कीव के सैन्य प्रशासन ने कहा कि 4 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि 100 से अधिक श्रमिकों और 28 वाहनों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। जीवित और बचे लोगों की तलाश उन हमलों के बाद जारी है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने ईरानी निर्मित घातक ड्रोन को शामिल किया था। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, 20 से अधिक ईरानी जानलेवा ड्रोन प्लस मिसाइल के साथ कई गोलीबारी की घटनाओं को रूस ने अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा कि उसने 16 ड्रोन को मार गिराया था। रूस द्वारा रात भर यूक्रेन में 21 ड्रोन से हमले किए गए। भारतीय राज्य तमिलनाडु के कांचीपुरम में आज पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कांचीपुरम कलेक्टर एम आरती ने बताया कि फैक्ट्री में 25 लोग काम कर रहे थे। उधर फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी आभास कुमार ने बताया कि धमाके से फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग ढह गई। फायर सर्विस की टीम और जिला पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैदेशिक रोजगारी में रहे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना में समेटने का काम हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का बढ़ा दायरा। देश के विकास के लिए सबका सहकार्य होना जरूरी है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। भारत से नेपाल में फोन करने पर लगने वाले शुल्क की दर घटाने का संचार मंत्री ने किया भारत सरकार से आग्रह। और यूक्रेन में रूसी सेना के ड्रोन हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।